ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। सिंधुपाल चौकी बाराबी से घुमथांग में आए भूस्खलन के कारण मरने वालों में से 11 लोगों की हुई शिनाख्त, 20 लोग अब भी लापता। अब केवल 2000 रूपये में ही किया जा सकेगा पीसीआर परीक्षण। आज 1039 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने, 9 संक्रमितों की मृत्यु। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर हुई 2,90,24,000 से ज्यादा। अब समाचार विस्तार से। सिंधुपाल चौकी बाराबी से 7, घुमथांग में भूस्खलन में दबकर मरने वाले 11 लोगों की शिनाख्त हो गई है। नागपूजे और भीरखर्क में आए भूस्खलन में जान गंवाने वालों में 62 वर्षीय भक्ति माया श्रेष्ठ, 98 वर्षीय टैक्सी शेरपा, 23 वर्षीय जुनू विश्वकर्मा, 24 वर्षीय शुक्लाल विश्वकर्मा, 8 वर्ष के संदेश विश्वकर्मा, 60 वर्षीय सरकिनी नेवार, 65 वर्षीय धनलाल विश्वकर्मा, 60 वर्षीय हीरामाया नेवार, 42 वर्षीय ज्ञानी माया प्रधान, 25 वर्षीय कर्ण बहादुर श्रेष्ठ और 5 साल की बच्ची सरस्वती विश्वकर्मा शामिल हैं। ये जानकारी पुलिस ने दी है। हादसे में अभी भी 20 लोग लापता हैं। दूसरी तरफ बागलों की जैमिनी नगर पालिका में आए भूस्खलन में दबकर वार्ड नंबर 1 की 63 वर्षीय लक्ष्मी देवी उपाध्याय और वार्ड नंबर 5 की 75 वर्षीय जलपा देवी पौड़ेल की मौत होने की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बागलूंग के इंस्पेक्टर दीपक रिजाल ने दी है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सिंधुपाल चौक में भूस्खलन में हुई जनधन की क्षति पर दुख जताया है। आज ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति भंडारी ने दुख व्यक्त करने के साथ ही भौगोलिक संवेदनशीलता का अध्ययन कर जोखिम वाली बस्तियों को सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित करने का संबंधित पक्षों का ध्यानाकर्षण भी करवाया है। इसी तरह विभिन्न पार्टियों के पार्टी प्रमुखों ने इस हादसे को लेकर दुख जताने के साथ ही बार बार सताते आ रहे ऐसे हादसों के स्थायी समाधान करने की बात पर जोर दिया। इसी बीच बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरमणि पौड़ेल ने आज एक संदेश जारी करते हुए उद्धार और राहत कार्य में जुटने की सभी से अपील की है। सरकार ने कोरोना की पीसीआर जांच का शुल्क आधे से ज्यादा कम कर दिया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में आज मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने बताया कि अब से निजी या सरकारी सभी प्रयोगशालाओं में पीसीआर जांच के लिए अधिकतम 2000 रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व पीसीआर जांच का शुल्क 4400 रूपये निर्धारित किया गया था। आज देश भर में कोरोना के 9 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के बाद जान गंवाने वालों की संख्या 345 हो गई है। साथ ही देश भर में आज कोरोना के 1039 नए मामले भी सामने आए हैं, जिसमें काठमांडू घाटी के 597 नए संक्रमित शामिल हैं। परसा के बीरगंज में कोरोना संक्रमण एक हद तक नियंत्रण में आने के बाद नारायणी अस्पताल में जनरल और ओपीडी सेवा संचालन की तैयारी की जा रही है। प्रमुख जिला अधिकारी असमान तामांग से मिली जानकारी के मुताबिक अश्विन एक गते के बाद नारायणी अस्पताल में जनरल और ओपीडी सेवा पुनः सुचारू होगी। कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए धनुषा जिले में जारी निषेध आज्ञा को और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। जिला सुरक्षा समिति धनुषा की आज की बैठक ने निषेध आज्ञा में थोड़ी बहुत ढील देते हुए इसे एक हफ्ता और जारी रखने का निर्णय किया है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है। दांग में कल से बाजार और सार्वजनिक यातायात के साधन संचालित किए जाएंगे। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार समेत व्यवसाय और सार्वजनिक यातायात साधन भी जोड़ बेजोड़ सिस्टम में चलाए जाने की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय दांग ने दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
*1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी मापदंडों को अपनाते हुए आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ने अपनी सभी परीक्षाओं को संचालित किया है। कोरोना संक्रमण के कारण स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को 2 बार स्थगित किया जा चुका है, लेकिन शैक्षिक कार्यक्रम की निरंतरता को मद्देनजर करते हुए परीक्षाओं को संचालित किया गया है। ये जानकारी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तिलक आचार्य ने हमारे संवाददाता के हवाले से दी है। कालीकोट में 54 शैया वाली विशेष अस्पताल को संचालित किया गया है। अस्पताल का शुभारंभ करते हुए कर्नाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही ने कहा कि अब इलाज के लिए मरीजों को जुमला या सुर्खित जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि कर्नाली प्रदेश की सरकार ने 1,70,00,000 बजट के साथ कोरोना विशेष अस्पताल का निर्माण किया है। अध्यागमन विभाग ने विदेशी नागरिकों को दी जाने वाली पासपोर्ट संबंधी सेवा को 1 महीने के बाद फिर से संचालित किया है। विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद श्रावण 26 गते से बंद की गई सेवा को आज से सुचारू किया गया है। विभाग ने ऐलान किया है कि चैत्र 8 गते तक पासपोर्ट नियमित करने वाले विदेशी पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने के 15 दिनों में स्वदेश लौटने वालों को निःशुल्क पासपोर्ट प्रदान किया जाएगा। ये जानकारी विभाग के निदेशक रामचंद्र तिवारी ने दी है। नेपाल के लिए पाकिस्तान के राजदूत मजहर जावेद ने आज गृहमंत्री राम बहादुर थापा से मुलाकात की। गृह मंत्रालय में हुई इस मुलाकात में दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय संबंध, सहयोग और आपसी सहकार्य के विषयों में विचार विमर्श किया गया। बता दें कि पाकिस्तानी राजदूत जावेद अपना कार्यकाल पूरा कर स्वदेश लौटने के क्रम में गृहमंत्री थापा से मुलाकात की थी। चितवन में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर जिला प्रशासन कार्यालय ने कार्यवाही की है। इसमें रत्ननगर वार्ड नंबर 1 के बकुलहर में रहे निर्मल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था के विनोद अधिकारी रामकृष्ण तिमसिना, मायानाथ अरियाल और निर्मला घिमिरे को प्रति व्यक्ति 10,000 जुर्माना भरवाया गया है। ये जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय चितवन के सूचना अधिकारी ईश्वर सिंघड़ा ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,90,24,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,08,91,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 9,25,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां 64,84,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,98,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में 47,88,000 से ज्यादा के लोग संक्रमित हैं, जबकि 78,900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ब्राजील में 43,15,000 से ज्यादा संक्रमित हैं, जबकि 1,31,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। सिंधुपाल चौक की बारहवीं से घुमथांग में आए भूस्खलन के कारण मरने वालों में से 11 लोगों की हुई शिनाख्त, 20 लोग अब भी लापता। अब केवल 2,000 रूपये में ही किया जा सकेगा पीसीआर परीक्षण। आज 1,039 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने, 9 संक्रमितों की मृत्यु। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर हुई 2,90,24,000 से ज्यादा। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।